نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گناہوں کے برے اثرات، اس سلسلے میں آج ہم کچھ مزید چیزوں کو دیکھیں گے کہ گناہ ہماری زندگی میں کس طرح سے داخل ہوتے ہیں اور کیسے پھر ہمیں اللہ کی نظروں میں بھی شرمسار کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی ہی گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے کہ میں کرتا کیا ہوں. بہت کم لوگ ہیں جن کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب کوئی تکلیف پہنچے. اس وقت اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی، میں نے تو سوچا نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کس کی بد دعا لگ گئی، کبھی کہتے ہیں نظر لگ گئی، کبھی کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا. یقین کریں، دنیا میں اتنی بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں حسد سے، کسی کے جادو سے، کسی کی نظر سے شاید ہی ہوتی ہوں جتنی ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس دلا دے کہ ہم گناہوں میں اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے سے بچائیں اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. آج جس موضوع سے ہم بک کے حساب سے بات کو شروع کریں گے وہ ہے شیطان کے ساتھ کشمکش. پیج 66 ہے اگر آپ بک کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کس طرح سے ایک انسان کو مختلف چیزوں میں لے کر چلتا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. شیطان کے ساتھ کشمکش. میں نے دیکھا ہے کہ تمام انسان حالت جنگ میں ہیں. شیطان ان کی خواہشوں کے تیروں سے ان کو نشانہ بناتے ہیں اور لذت کی تلوار سے ان پر وار کرتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. لذت ہے اصل مشکل جو گناہ چھوڑنے نہیں دیتی. جیسے شوگر کا پیشنٹ بھی مٹھاس نہیں چھوڑتا کیونکہ لذت ہے. ٹیسٹ، گناہ کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا، جب فطرت کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں نا، تو پھر ایک انسان حقیقت میں گناہوں پہ پریشان اور شرمسار اور شرمندہ ہونے کی بجائے لذت محسوس کرتا ہے. اس کے برعکس نوٹ کیجئے گا کہ ایک سچا مومن گناہوں میں کبھی بھی لذت نہیں پاتا. ایسے ہی ہے کہ جب ٹیسٹ بگڑتا ہے تو لوگ شراب بھی نشے سے پیتے ہیں، اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو شراب سے ہی بو آنے لگے اور وہ وومٹ کرنے لگ جائے. تو گناہوں کی لذت جو ہے اس سے بچنا ہے، اور ان سے ملنے والے پہلی ملاقات میں چت ہو جاتے ہیں، اور ان سے خود کو بچانے والے سخت محنت و مجاہدے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور جنگ باقی اور طویل ہے. اور یہ ان تیروں اور تلواروں سے زخمی ہوتے ہیں اور توبہ کے ذریعے علاج کر کے ٹھیک ہوتے ہیں. یعنی جو بھی اس سے لذت کے بعد ہمیں تیر پڑتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، اور مرنے سے بچ جاتے ہیں. بہرحال زخم ٹھیک بھی ہو جائے، اثر تو باقی رہتا ہے، اور چہرے پر زخم کا نشان تو بددما لگتا ہی ہے. لہٰذا ہر ممکن کوشش یہ ہو کہ شیطان کا تیر ہی لگنے نہ پائے اور خود کو ہمیشہ بچانا چاہیے. تو کیا بات سمجھ آئی اس میں کہ ہر وقت ہم شیطان کے ساتھ ایک کشمکش کی حالت میں ہوتے ہیں. جتنا انسان کا نفس مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی فتح ہوتی ہے، اور جتنا نفس لوامہ کمزور ہوتا جاتا ہے اتنا شیطان کی فتح کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس میں ہم چیک کریں، کیا حقیقت میں آپ اور میں ریئل میں دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ اور انشاءاللہ ہم نے توبہ کے ذریعے علاج کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. پھر اگلی بات کیا ہے کہ ہمیشہ شیطانی چالوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا ایک جال ہے، غافل شخص پہلی نظر میں اس میں پھنس جاتا ہے، اور متقی و پرہیزگار شخص خود کو بچاتا ہے اور صبر کرتا ہے اور اس کی رنگینیوں کے جال سے باہر رہتا ہے. کتنے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو سال ہا سال مجاہدہ کر کے بھی ذرا سی غفلت کر کے اس جال میں پھنس گئے. اس لیے کسی وقت بھی ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت اس سے ڈرنا چاہیے. یقین کیجئے کہ گناہوں کے اثرات نہایت برے ہیں. ان سے حاصل ہونے والی فی الحال کی لذت سے ان کی کڑواہٹ ہزار گنا زیادہ ہے. ان لوگوں پر نہایت افسوس ہے کہ تیر کھا کر بھی درد کا احساس نہیں کرتے. زخموں سے چور چور ہیں مگر انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سخت عقوبات، عقوبات کہتے ہیں سزاؤں کو، سخت عقوباتوں اور سزاؤں کی لپیٹ میں ہونے کے باوجود انہیں کوئی شعور نہیں کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں. اس کو نوٹ کریں. دیکھیے، کوئی کسی کو نہ سوچے اپنے آپ پہ لے، कोई तकलीफ है मुझे, बीमारी है, बच्चे का गम है, ज़हनी इज़तराब है इस वक्त। हम में से हर एक इस वक्त किसी न किसी सोच का शिकार है। लिखिए कि ये मेरे किसी गुनाह की सज़ा है। यकीन करें, आपका सिनेरियो ही बदल जाता है सोचने का। बिल्कुल इंसान उस तरह फिर सोच ही नहीं पाता जैसे कि सोचने की ज़रूरत होती है। मेरी उम्र की कसम, अकूबत को अकूबत ना समझना ही अजीम अकूबत है। इसको हाईलाइट कर दें क्या, कि अकूबत को यानी सज़ा को सज़ा ना समझना सबसे बड़ी सज़ा है। ताज्जुब है कि अपने नफ्स को मुगालते में डाल रखा है, नफ्स को इसकी ख्वाहिशात मुहैया करके इसको भी खुश करता है और इताअत से अल्लाह को भी राज़ी करता है और इसे नेकी कहता है। अरे तेरा नास हो, अपने बटवे से खर्च करके अपनी पूंजी को बर्बाद कर रहे हो और अपनी इज्जत के चेहरे को दागदार कर रहे हो, और ये ख्याल नहीं करते हो कि बसा औकात एक जख्म भी कत्ल का सबब बन सकता है। एक लग्जिश हलाकत के घड़े में उतार सकती है। होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। किस चीज़ का इंतज़ार करते हो? तौबा करने में क्यों ताखीर से काम लेते हो? और ये सोचो कि दुनिया में तुम्हारी तमाम उम्मीदें और तमाम तमन्नाएं अगर पूरी हो भी जाएं तो वो जल्द ख़त्म होने वाली हैं, और इनका आखिरी घूंट इंतहाई कड़वा है, क्योंकि या तुम अपना आखिरी घूंट छोड़ोगे या वो तुम्हें छोड़ेगा। इस अक्ल के लिए सख्त अफसोस का मुकाम है जो इंजाम और अवाकिब पर गौर व फिक्र नहीं करती। क्या कबूर की तरफ नहीं देखते कि ये लोग भी हमारे साथ थे, अब पैबंदे खाक हो चुके हैं, यानी ज़मीन में जा चुके, मिट्टी के नीचे जा चुके। कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ जमा किया मगर दुनिया में ना रहे? अल्लाह ताला की रहमत भी मुआतबे के बाद आती है। मुआतबा के वही जैसे अताब होता है ना, उसी को जहन में रख लीजिए, यानी डांट। क्या हाल होगा अगर अताब के बाद अताब भी हो? चुनाचे मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अस-सैरफी के मुतालिक मरवी है, वो फरमाते हैं कि मेरे एक पड़ोसी ने याह्या बिन अकसम को इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा और इनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो कहने लगे, मैं दरबारे इलाही में पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया, सुअल तलक या शेख। मैंने उसके, या अल्लाह आपके रसूल ने फरमाया कि आप इस 80 साल बूढ़े को अजाब देने से हया करते हैं? मैं 80 साल बूढ़ा हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे रसूल ने सच कहा। अल्लाह अकबर, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। यानी सूअतुल लक या शेख से मुराद क्या था कि तेरी बुराई हो, यानी कि उनको पकड़ने का या उनको डराने का या अताब का अल्लाह का मामला था, लेकिन जब उन्होंने हदीस की बात बयान की तो अल्लाह ने उस पर माफ़ कर दिया। मोहम्मद बिन असलम अल-हवास कहते हैं, मैंने याह्या बिन अकसम को ख्वाब में देखा और इनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? इसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे अपने सामने खड़ा करके फरमाया, क्या दुनियावी लज्जात में मगन होने के लिए ये काफ़ी है? हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ख्वाब गफलत से बेदार फरमाए और गुनाहों की बीमारियां या गुनाहों की बुराइयां हमारे सामने जाहिर फरमा दें। तो फिर आपके मेरे लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। खुलासा क्या है? कि अपने आप को हमेशा तैयार रखें। किस बात के लिए? कि हम अपने गुनाहों की सज़ा भुगत सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम अगर पकड़े गए अपने गुनाहों पे, तो तौबा ही वो चीज़ है जो हमें उन गुनाहों से पाक करेगी। और अगली बात है कि हम सब मुसलसल शैतान के चुंगल में हैं, कश्मकश से ज़िंदगी गुजारनी है और अपने आप को बचाना है। इसके बाद आगे है मौत की तैयारी। इसकी भी बहुत ज़रूरत है अपने ऊपर लेकर काम करने की और इस बात को देखने की कि किस तरीके से एक इंसान मौत के लिए तैयारी करता है और मौत के लिए हर वक्त तैयार रहने से क्या मुराद है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं कि जो मौत से पहले मौत की तैयारियां करते हैं, जैसे मेहमान के आने से पहले मेहमान के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मौत के लिए भी एक मेहमान समझते हुए तैयार रहना चाहिए। मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए क्योंकि वो अचानक आती है। अपनी जवानी और सेहत से धोखा नहीं खाना चाहिए क्योंकि बुढ़ापे की मौत तक कम लोग पहुंचते हैं। अक्सर लोग जवानी में लुकमा अजल बन जाते हैं। इस पर किसी शायर ने खूब कहा कि तवील उम्र एक आदमी पाता है मगर पूरी कौम को धोखे में डालता है, और जवानी में मरने वालों को भुला देता है। और लंबी उम्मीद बहुत बड़ी मुसीबत है और बहुत बड़ा धोखा और सबसे बड़ी आफत है। इसलिए तूलुल अमल यानी लंबी उम्मीद की वजह से इंसान लापरवाही और गफलत का शिकार हो जाता है, और तौबा की उम्मीद पर इर्तकाबे गुना भी तूले अमल का समरा है, और तौबा में ताखीर का सबब भी यही तूले अमल है। अगर तूले अमल में कमी नहीं कर सकते तो इसको कम करने वाले अमल करते रहो। तूले अमल क्या है? आप खुद पढ़ते हैं कुरान में। कि ये वो चीज़ है कि जिसके बाद एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना खो जाता है कि वही जिसको कहते हैं कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, लंबी उम्र झूठी आरज़ूएं, आज ये करेंगे बच्चे बड़े होंगे फिर इधर जाएंगे और ये होगा और वो होगा और दिस एंड दैट, इस तरह के काम करते करते एक इंसान अपने आप को अल्लाह की नज़रों में गुनाहगार कर लेता है, और ये बात अपनी ज़िंदगी में अपने आप में लाने की ज़रूरत है कि मैंने इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को कम करना है और अल्लाह ताला से राज़ी रहना है और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे। और ये भी जो बात है ना कि तौबा की उम्मीद पर गुनाह का इर्तकाब भी तूले अमल का समरा है, और तौबा में तअख़ीर का सबब भी यही तूले अमल है। अगर तूले अमल में कमी नहीं कर सकते तो इसको कम करने वाले अमल करते रहो, और शाम के वक्त दिन में किए गए आमाल पर गौर करो, अगर कोई गुनाह का काम सरजद हुआ है तो फौरन तौबा करके इसको मिटा दो और इस्तग़फार के ज़रिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, और सुबह होते ही रात के तमाम अमाल को सामने रखो और गुनाहों पर फौरन तौबा करो। तौबा में तअख़ीर हरगिज़ ना करो, इसमें टाल मटोल करना सबसे बड़ा शैतानी हरबा और इबलीसी हथियार है जिसके ज़रिए शैतान इंसान को हलाक करता है। अपनी उम्र की कमी और मशगूलियात की कसरत मौत के वक्त ज़िंदगी में की गई कोताहियों पर सख्त नदामत और अफसोस की कैफियत को भी सोचा करो, और मरने के बाद सख्त हसरत और नदामत से दो चार होने की हालत को भी पेश नज़र रखो और इस पर गौर व फिक्र करो, और ये भी सोचा करो कि अल्लाह ताला कामिलीन को किन किन नेमतों से नवाजेंगे जबकि तुम नाकिसुल अमल हो। दुनिया में लोग आखिरत के लिए क्या क्या मेहनत करते हैं और तुम सुस्ती और काहली में पड़े हुए हो, और अपनी कैफियत को इस तरह बनाओ कि कोई दिन बल्कि कोई सात और लम्हा नफ्स को नसीहत और मौइज़त से खाली ना हो, यानी हर लम्हे कोई ना कोई अच्छी बात सीखो, अच्छी बात करो, अच्छी बात पे गौर व फिक्र करो। और याद रखिए कि जितना ज़्यादा एक बंदा अपने आप को काबू में रखता है उतना शैतान उससे डरता है। ज़रा सी गफलत बायसे हलाकत हो सकती है, कितने होशियार लोगों के हाथ ख्वाहिशों के जाल में फंस चुके हैं और कितने ही बेहोश लोग हलाकत के घड़े में गिर चुके हैं। बचता कौन है? जिसके लिए वही जुमला है, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, नहीं है कोई कुव्वत घेरने वाली मगर अल्लाह की। अल्लाह की ताकत से ही सब कुछ होता है जो अल्लाह ताला बंदे को देता है। तो फिर आपने मैंने अपने लिए क्या बात ली इस पैराग्राफ में से? तूले अमल से बचें। देखिए आज कभी बैठकर इंसान सोचे तो सौ सौ आंसू बहा ले अपनी हालत पे, लंबी लंबी आरजुओं ने आज के दिन को हमारा ख़राब किया हुआ है, आज का दिन इंजॉय नहीं कर पाते। आज की ज़रूरियत है पूरी अल्हम्दुलिल्लाह, अगले हफ्ते की भी, एक महीने की है, लेकिन अब 10-10 साल बच्चों का मुस्तकबिल, अब उसका घर, अब उसके बच्चे, अब उसका फुलां फुलां, मुस्तकबिल की ख्वाहिशों ने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। इस वक्त भी सोचिए अगर हम फोकस होके क्यों नहीं सुन पाते, हफ्ते में सिर्फ एक दिन की क्लास, हमसे वो नहीं हो रही तो मुझे बताइए इसके बाद और क्या होगा? क्या हम जैसे लोगों से अल्लाह कोई अच्छी उम्मीदें रखवाए? क्या हम चेंज लाएंगे? हमारी ज़िंदगी जो दिन में 5 दफ़ा 6-7 दफ़ा अल्लाह की नेमतों को खाने पीने के तौर पे इस्तेमाल करें, हासिल करें, क्या हम वाकई अल्लाह के मिशन को, अल्लाह के इस दीन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम हमेशा सिर्फ इसी तरह से एक साइड पे, एक सिर्फ अपनी ज़िंदगी को एक एहसास दिलाने के लिए, खाना पूरी के लिए एक दीन का नाम रखेंगे? आज हमारी ज़िंदगियाँ क्यों इतनी मसरूफ़ हैं? कभी आपने सोचा मेरी छुट्टी क्यों होती है? मैं क्यों लेट आती हूँ? मैं वक्त से पहले क्यों चली जाती हूँ? यकीन करें शर्म आनी चाहिए हमें, अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, मुझे तो बहुत आएगी अपने ऊपर, क्योंकि मुझे अल्लाह ने दुनिया से ज़्यादा दिया है। सारी दुनिया की नेमतें मिल जाएं लेकिन किसी को कुरान की खिदमत का मौका मिल जाए, कुरान उसको पढ़ने का मौका मिल जाए और उसको पढ़ाने का मौका मिल जाए, इसको छोड़कर चाहे दुख हो या सुख हो वो दुख ही है, वो खुशी नहीं हो सकती। और याद रखिएगा कि अपना अकीदा बनाए, मेरा यहाँ बैठना मुझे डॉक्टर पे बैठने से बचा रहा है, मेरा यहाँ बैठना मुझे मुकदमों में फंसने से बचा रहा है, मेरा यहाँ बैठना मेरे बच्चों के गमों से मुझे बचा रहा है। जितना ये अकीदा मजबूत होगा आप देखेंगे उतना अल्लाह का आपके साथ बेहतर मामला होगा। अमाल में तो कमी है, अकीदे में पुख्तगी होगी, अल्लाह की नुसरत अल्लाह की मदद आपके साथ होगी, तो लिहाजा लंबी आरजुओं को ख़त्म कीजिए, जो ख्वाहिश है पूरी करके उसको ख़त्म कर दीजिए, और लंबी लंबी आरजुओं में जीना और इस ज़िंदगी जैसे खूबसूरत वक्त को ज़ाया कर देना ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के लिए हसरत का ज़रिया बनेगा। आगे है बेहतर तौबा, गुनाहों से हत्तुल इम्कान बचना चाहिए, इसलिए कि गुनाहों का अंजाम बहुत ही बुरा और हौलनाक है। कितने गुनाह ऐसे हैं जो गुनाहगार को मुसलसल इसके मर्तबे से गिराने के साथ साथ मजीद लग्जिश कदम का जरिया बनते हैं, और दुनिया भी हाथ से निकल जाती है जिससे सख्त हसरत और कोफ्त होती है। खासकर इन लोगों को देखकर हसरत और परेशानी की इंतहा होती है जिनको दुनियावी लज्जतें मुयस्सर हैं, और अगर इस गुनाह की सज़ा अगराज़े दुनियावी के ख़त्म होने की सूरत में बर वक्त मिले तो अज़ाब दोबाला हो जाता है। अफसोस है इस शख्स पर जिसको अज़ाब में मुबतला होकर भी अज़ाब का एहसास नहीं है, और वह अज़ाब और भी सख्त है जो बर वक्त ना हो, हत्ता कि इसका सबब भी जहन से निकल जाए और तौबा की तौफीक ना हो। अलामा इब्ने सीरीन के इस कौल से इबरत हासिल करो जिसमें वो फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को फ़क्र व मुख्ताजी का आर दिलाया, 40 साल के बाद मैं खुद फ़क्र में मुबतला हो गया। इब्ने हलाल का ये कौल भी इबरत के लिए काफ़ी है। वो फरमाते हैं मैंने एक खूबसूरत जवान की तरफ देखा, इसकी सज़ा ये मिली कि मैं 40 साल के बाद कुरान भूल गया। हाय अफसोस इस शख्स पर जिसको अजाब में मुबतला होकर भी एहसास अजाब नहीं, और यही अदम एहसास अजाब सबसे बड़ा गुनाह और अंदोहनाक अजाब है। अल्लाह अल्लाह, तौबा कितनी अजीम नेमत है जो गुनाहों के अजाब से इंसान को बचाती है, और गुनाह कितना अजीम नुकसान का बायस है, खसूसन खलवतों के गुनाह। अल्लाह ताला की नाफरमानी खुद इंसान को अपनी नज़रों से गिरा देती है। अल्लाह ताला के साथ अपने खुफिया राबते को दुरुस्त कर, अल्लाह ताला तेरे ज़ाहरी ताल्लुक़ को दुरुस्त फरमाएंगे। ऐ गुनाह के मुर्तकिब, गुनाह के जाहिर ना होने और किसी के ना देखने से धोखा ना खा, किसी वक्त भी तेरे खुफिया गुनाह से पर्दा हट सकता है, और अल्लाह ताला के हिल्म का सहारा मत लो, अचानक अल्लाह ताला का अजाब तुमको अपनी लपेट में ले सकता है। बल्कि गुनाहों पर गम और परेशानी, लजाजतों तदर्रो और गड़गड़ाने को हमेशा अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ। इस मामले में अगर कोई नफामंद शय है तो वो तौबा और नदामत के आंसू है। अल्लाह ताला आपको मुझे अपने गुनाहों का एहसास भी दे दे, और हम इसके ऊपर शर्मसारगी भी महसूस करें, और इस तरह से अपने आप को मैं और आप देखें कि जिसके बाद हमारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन तौबा की तरफ पलट जाए। ये खूबसूरत तौबा ही है जो आपकी मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत करेगी। याद रखिए, तो ऐसे गंदे कपड़े साफ़ हो गए, मैले बर्तन धो लिए आपने, घर में गंदगी थी उसको उठा दिया, और आप अपने घर की गंदगी को, सफाई को इस तरीके से अहमियत देते हैं, तो क्या हम अपने नफ्स पे लगे हुए इन धब्बों को अहमियत नहीं देंगे? फिर इसके बाद क्या है कि अल्लाह ताला इंसान के अपनी अजमत के बकदर इसको इज्जत देता है। मेरे भाई, एक तजुर्बाकार और बाखबर शख्स की नसीहत को गौर से सुनो। वह नसीहत ये है कि इंसान जिस कदर अल्लाह की ताज़ीम करेगा, उतना ही अल्लाह ताला लोगों के दिलों के अंदर इसकी ताज़ीम और इज्जत डाल देगा। जिस कदर इसमें कमी होगी तो लोग भी इस कदर कम ताज़ीम करेंगे। अल्लाह की कसम, मैंने बाज़ लोगों को देखा कि उन्होंने अपनी तवील उम्र इल्म के लिए सर्फ कर दी, यहाँ तक कि बूढ़े हो गए, फिर हदूद की खिलाफ वर्जी की तो लोगों की नज़रों में मुअज़्ज़म न रहे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। हम सब अपने लिए भी दुआ करें कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें आखिरी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों से गिरा दे और हम इल्म के साथ बंधा हुआ ये ताल्लुक़ तोड़ दें। मजबूत इल्मी इस्तेदाद और कुव्वत मुजाहदे के बावजूद लोगों का रुझान और इल्तफात इनकी तरफ न रहा। इनके बिलमुकाबिल ऐसे लोगों को भी देखा जो हदूदुल्लाह की पासदारी की बिना पर कम इल्मी के बावजूद लोग इनकी तज़ीम में बिछ गए। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों के अंदर इनकी अजमत डाल दी जिसकी बिना पर वो अपने से भी कई गुना ज्यादा लोगों की नज़रों में बढ़ गए। लोगों का रुझान इनकी तरफ दिन ब दिन बढ़ने लगा, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जब तक वो दीन पर मुस्तकीम रहे तो लोगों का मामला भी इनके साथ दुरुस्त रहा, जब जरा बराबर कमी की इनके साथ भी इसी तरह का मामला हुआ। और याद रखिए कि बाज़ दफ़ा गुनाह की पादाश में मिलने वाली सज़ा तवील भी होती है। ऐ गुनाह के मुर्तकिब शख्स, गुनाह की पादाश में अगर सज़ा के असरात नमूदार हो जाएं तो शोरगुल ना मचा और ना ये कह कि मैंने तौबा की थी, इसके बावजूद मुझे सज़ा क्यों मिली, क्योंकि हो सकता है कि तुझसे सही तरह तौबा ही ना हुई हो। सज़ा तवील मर्ज की तरह लंबी भी हो सकती है। इसको दूर करने के हरबे इस वक्त तक कारामत नहीं हो सकते जब तक इनके ख़त्म होने का वक्त ना आया हो। सज़ा अपने वक्त में ही ख़त्म होती है। ऐ ख़ताकार, तू इस वक्त तक सब्र इस्तकामत से काम ले जब तक तेरी आंखों का पानी तेरे दिल के गंदे कपड़ों के अंदर घुस जाए और इनको बार बार निचोड़ने से पाकी का हुक्म न लग जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक इज्तिहादी गलती पर कई साल रोते रहे। ये 300 कलश मैंने खुद काट दिया, इसलिए कि हम नहीं जानते, बस कई साल का लफ्ज़ काफ़ी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल की बीमारी में मुब्तला रहे, ये भी एक रिवायती है, हम इसको बस एज इट इज़ बोल देते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में 8 साल रोते रहे, इसके ऊपर भी 8 के लफ्ज़ को कई साल कर दें तो बेहतर है। मुसीबतों के ख़त्म होने के अपने औकात होते हैं, इसको हाईलाइट करें। मुसीबतों के ख़त्म होने के अपने औकात होते हैं, इसके पूरे होने पर वो दूर होते हैं। बस मसाइब तो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते, और ऐसी हालत में इनाबत इलल्लाह अपने किए पर नदामत और पशेमानी और आहोजारी को लाजिम पकड़, रोने धोने और हुज्न को अपना ओढ़ना बिछोना बना, तब जाकर ये मुसीबत छुटेगी और खुशी हासिल होगी। अगर इस गमो बुकार परेशानियों हुज्न और नदामत के ज़माने में मौत का पैगाम आ जाए, तो दुनिया के ये गम और परेशानी और नदामत आखरत के गम और परेशानी का बदल होगा, जो इंसान के लिए अजीम नफ़ा है और बेहतरीन कामयाबी है और बेबहा सरमाया है। तब आप देख लीजिए कि किस तरीके से इंसान के ऊपर जो मुश्किल आती है ना, वो अपने वक्त पे टलती है। आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। आपका मेरा काम क्या है? अपने गुनाहों के सबब को पहचाने। और ये भी याद रखिए कि अल्लाह के गुस्से की आग को तौबा के आंसू ही बुझाते हैं। अक्लमंद इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो गुनाहों के करीब ही न भटके, इसलिए कि इसकी राख के नीचे कोई चिंगारी हो सकती है। बस अवकात सज़ा में ताखीर होती है, कभी जल्दी भी आ जाती है, तो गुनाह की आग को बुझाने में हरगिज़ देर न कीजिए। और इस आग को आंख के पानी के सिवा और कोई पानी नहीं बुझा सकता, सिर्फ आंसुओं से ही इस आग को बुझाया जा सकता है। हर हाल में अल्लाह से डरते रहना चाहिए। वो कैसा आरिफ मिल है? आरिफ कहते पहचानने वाला, यानी अल्लाह की मार्फत वाला, जो इसके अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है, यानी जो अल्लाह को पहचान ले वो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर ही नहीं सकता। क्या वो नहीं सोचता कि अल्लाह ताला की माइयत के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं, और दुनिया आखरत की तमाम कामयाबियां इसी के दस्ते कुदरत में हैं? अफसोस है इस शख्स के लिए जो अपनी ख्वाहिश नफ्स के लगाम को ढीला छोड़ देता है। ऐ साहिबे ज़ौक, मेरी नसीहत पर तवज्जो दो। इस बुजुर्ग के वाक़े को पेशे नज़र रखो कि एक मरतबा इसने बेरूत के शहरे पनाह पर किसी जवान को याद इलाही में मसरूफ़ देख कर कहा, ऐ जवान, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? इसने कहा, अगर ज़रूरत हो तो दिल ही में अल्लाह ताला से अर्ज़ करता हूँ, इसको पूरा करता है। ईमान का दम भरने वालों, अपने मशरब को गदला मत करो, यानी वो बर्तन जिसमें पानी पीते हो। होशियार दरबान की तरह अपने नफूस की हिफाजत करो, हर फसादी शय को इसके अंदर दाखिल होने से रोको। हबीब की पसंद के लिए अपनी अगराज को कुर्बान करो तो तुम्हारे मकासद खुद बहुत हासिल होंगे। अलबत्त इस मामले में अजर मिलने की कसद से अपने मकासद को कुर्बान मत करो, ये अबूदियत के खिलाफ है। और अबूदियत ये है कि महज अल्लाह ताला की रजा जोई के लिए अमल किया जाए, इसलिए कि गुलाम को ये जेब नहीं देता कि वो मौला से उजरत हासिल करे। मौला कहते मालिक को, जो गुलाम का होता है, मौला से उजरत हासिल करके काम करे। गुलाम तो मौला को राजी करने के लिए अमल करता है, और महबूब के वसल के लिए सब कुछ कुर्बान किया जाता है। अल्लाह को राजी करने के लिए मसायब व तकालीफ झेलना दुश्वार हो तो अल्लाह ही से मदद तलब करो। महबूब के वसल के लिए सब कुछ कुर्बान किया जाता है, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए मसायब व तकालीफ झेलना दुश्वार हो तो अल्लाह ही से मदद तलब करो। और अगर मुश्किलात व मसायब के नीचे दब भी जाएं, तब भी अल्लाह की रहमत से हरगिज़ ना उम्मीद ना हो। अल्लाह की कसम, खिदमत करने की हालत में मरना उकला के यहाँ इंतहाई मुस्तहसन समझा जाता है। मेरे भाइयों, मैं अपने नफ्स को खिताब करके कहता हूँ, ऐ मेरे नफ्स, अब आप और मैं भी अपने लिए कहें ये चीज़, ऐ मेरे नफ्स, अल्लाह ताला ने तुझे हर वो चीज़ अता की है जो तेरे ख्याल में भी ना थी, और तलब के बगैर तुझको नवाजा है, तेरी खामियों और ऐबों पर पर्दा डाला है। अगर वो जाहिर हुए शर्मिंदगी होती तो फिर मकासद की तकमील में ज़रा बराबर कमी होने पर क्यों शोर मचा रहे हो, चीखते चिल्लाते हो? तुम आज़ाद नहीं हो, तुम तो गुलाम हो। तुझे मालूम नहीं कि तुम दारुल मेहनत में हो, यानी ये दुनिया मेहनत की जगह है। ये खिताब जो मैं कर रहा हूँ अनजान के लिए करना मुनासिब है, तुझे तो मार्फत का दावा है, कहाँ गई तुम्हारी मार्फत? तो ये नहीं सोचता कि अगर एक हवा चले और तेरी कुव्वत बेनाई को ख़त्म कर दे? एक एक जुमले को हम सब अपने दिल पर लेकर देखें, कितना कादिर अल्लाह हम पे। अगर एक हवा चले और तेरी कुव्वत बेनाई को ख़त्म कर दे तो क्या तेरी ज़िंदगी का मज़ा बाकी रहेगा? अफसोस है तुम पर कि तुमने इस अजीम बसीरत पर पर्दा डाला है जो बसारत से अशरफ वाला है। मैंने तुझे ढील दी तो खता और बुराई में पेशकदमी ही करता रहा। तेरी उम्र की कश्ती साहिले कब्र पर लंगर अंदाज होने को है, जबकि तेरे पास ऐसा कोई सामान नहीं जो तेरे लिए मुनाफे बख्श हो। तू उम्र की इंतहा को पहुंचा है, जबकि तेरी आंखें अब भी बचपन की तरह देख रही हैं। ऐ अल्लाह, दुश्मनों के सामने मुझे रुसवा न कर, मैदान को सर करने की ताकत रखने के बावजूद पीछे न रहना, खलबत की हिफाजत करना रख लो, दानिश से काम ले और फिक्र के जोलानगाह में कदम रख और साबका की तलाफी की कोशिश कर। तुझ पर बड़ा ताज्जुब है कि जूं जूं तेरी उम्र बढ़ रही है, तू तू तेरे अमाल घट रहे। कैसे घटते हैं अमाल भला? बुढ़ापे में वो नेकियां भी नहीं हो पाती जो आज जवानी में कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, और अफसोस कि अगर आज भी ना की तो फिर कल क्या बनेगा। मौत हकीकत बनकर आने वाली है, तू अब भी मजाक में मसरूफ है। तेरी उम्र का पहला हिस्सा आखिरी हिस्से से बेहतर था, तू जवानी में बुढ़ापे की बनिस्बत ज्यादा बेहतर था। वतिल्कल अमसालु नदरिबु हालिन नासी वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून। अल्लाह ताला से तौफीक के आमाल की दुआ है और वो सुनने वाला और कबूल करने वाला है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब अपने आप को समझें, अपने गुनाहों की सजा जो भुगत रहे हैं इसको कम करवाने के लिए तौबा करें, आइंदा से गुनाहों से माफ़ी की नीयत करें और अल्लाह ताला आफियत दे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।